11 प्रतिमा में से केवल 2 प्रतिमा का वर्णन रह गया है। सुबह जो रहते हैं वो दोपहर को नहीं रहते, और जो दोपहर को रहते हैं वो सुबह नहीं रहते, इस प्रकार हो रहा है। अब वर्णन तो सबने सुना है, सुबह भी सुन लिया, दोपहर को भी सुन लिया। अब ये तैयारी चलनी चाहिए, संकल्प, एक डेढ़ साल का या एक साल का अभ्यास करने का संकल्प लेना उचित रहेगा। इसके लिए मन बना करके और तैयारी चलना चाहिए। टंकी है, चक्की है, इसकी जल्दी व्यवस्था शुरू। फिर आप अपना नाम नोट करा दें, सामुदायिक रूप से इसकी व्यवस्था हो, किस किस को क्या क्या कम है, मतलब क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या व्यवस्था आपको करानी पड़ेगी, वो सब सामुदायिक सोचेंगे। और जिसके यहाँ व्यवस्था है वो भी नाम नोट करा दें और संकल्प लें, एक साल का हम अभ्यास करेंगे, इस तरह से संकल्प के साथ चलेंगे। इसमें कितने लोग हैं ऐसे करने वाले, संकल्प लेने लायक? 1, 2, 3, 4, 5, एक साल तक अभ्यास करना है। अभ्यास में ये कोई नियम नहीं कि अगर कुछ किसी दिन हमको समस्याएं आई और उस दिन उस व्रत के विरुद्ध कुछ हुआ तो पाप लगेगा क्या, ऐसा सोचना नहीं है, वो भी अति है। अभ्यास में, अभ्यास तो अभ्यास है, यानी अखाड़े में अभ्यास करना, मैदान में बाद में जाना है। अखाड़े में अपन गिरे तो भी ठीक, जीते तो भी ठीक, लेकिन अभ्यास करना। एक साल तक अखाड़े में है ऐसा समझ करके अभ्यास करते हुए जाना है। अगर किसी दिन दोष भी लग गया तो उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं होता, व्रत आने के बाद ही प्रायश्चित। और कुछ शंकाएं हैं क्या? कल भी चर्चा हुई, परसों भी चर्चा हुई, कुछ शंकाएं? हाँ, अंतराय का, ठीक है, अंतराय का क्या करना चाहिए? जीव का अंतराय तो करना चाहिए, जीव का अंतराय। बाल का अंतराय का कोई नियम नहीं है, उस चीज को निकाल करके रख करके आप खा सकते हैं, जिस चीज में वह अशुद्ध बाल आता है तो उसको निकाल करके रख दिया, बाकी भोजन आप कर सकते हैं। और जीव आ गया हो तो आप अंतराय कर सकते हैं, जीव का अंतराय करना चाहिए। किस किस का अंतराय पालन करना चाहिए? बाल और जीव का, कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। कठिन पड़ेगा क्या? नहीं, शाम को खाते हैं तो काय का कठिन, दो बार तो खाना ही है ना, शाम को खा सकते हैं तो कठिन कहाँ है। सुबह अंतराय हो गया तो शाम को खाएंगे, शाम को अंतराय हो गया तो मर सुबह खाएंगे, ऐसा कठिन कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, बैठ करके कहीं भी खा सकते हैं, शुद्ध स्थान, शुद्ध हो, साफ सुथरा करके, हाथ पांव धोकर, एक वस्त्र, घर में ही खा रहे हैं तो थोड़ा सा वस्त्र भी चेंज कर सकते हैं, कोई सोले का हो तो हाथ से उसका उपयोग कर सकते हैं। हाँ हाँ करना चाहिए, शुद्ध कपड़े से ही भोजन बनाना चाहिए, बनाते समय अशुद्ध और खाते समय शुद्ध। बनाते समय शुद्ध पहनना, जैसे स्नान कर लिया, ये तो रोजाना का ऐसा ही रोज भी होता है ना, क्या स्नान किए बिना भोजन बनाते नहीं? स्नान तो करते ही हैं और धुला हुआ वस्त्र पहन ही लेते हैं, तो हो गया, उसी पर बना सकते। बनाते समय ऐसा ही वस्त्र हो, ऐसा ही ऐसा कोई नियम नहीं है, धुला हुआ वस्त्र हो गया तो हो गया। पूजन के समय, आहार दान देते समय एक ड्रेस का नियम होता है कि ऐसा ही हो, लेकिन वो नियम वहाँ लागू नहीं होगा। जब आप खाना बनाते हैं, देते समय क्या है, आप धोती दुपट्टा पहनते हैं, ठीक है, आवश्यक है भी वो, परंतु वो भोजन करते समय आपके धुले हुए वस्त्र हों और भोजन कर रहे हों तो हो गया। और घर में कह रहे हैं तो कैसा भी एक लुंगी पहन करके खाना खा लिया, हो गया। वस्त्र की समस्या हो तो किसी दिन, ऐसा समस्या नहीं, ये दो जोड़ी तो रखना चाहिए, काय के लिए, सोले के लिए, कभी पूजन किया, कभी दर्शन किया, कभी बाहर से होकर के आए, कभी वो ऐसा परिस्थिति में दो वस्त्र हो तो क्या होता है, दो जोड़ी, दो दो जोड़ी का दो वस्त्र रखेंगे तो समस्या नहीं होती। और कहीं बाहर जा रहे हों तो उस वस्त्र को, धुले हुए वस्त्र को पॉलीथीन के बैग में डालकर पैकिंग करके आप ले जा सकते हैं, सोले का वस्त्र, जहाँ खाने के लिए आपको चाहिए पड़ता हो, उतने समय के लिए उसको निकाल लिया, पहन लिया, खाना खा लिया, निकाल लिया, फिर पैक कर दिया, हो गया। और क्वेश्चन? हाँ, अंतिम संस्कार है ना, सल्लेखन का स्मशान भूमि में, हाँ व्रती, हाँ व्रती जा सकते हैं, जा सकते, किसी दूसरे के यानी संबंधी नहीं है, मित्र या गांव का किसी को अन्य संबंधी मर गए तो उनको संस्कार करने के लिए ले जाते हैं और उनके साथ जाना पड़ा तो आप जा सकते हैं, लेकिन आने के बाद स्नान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए आने के बाद, स्नान मात्र से वो सूतक दूर हो जाता है। जाने में कोई दिक्कत नहीं, कहाँ का पानी, एक पानी कहाँ का, वहीं का क्या, ले साथ ले जाए, वो साथ जो ले जाते हैं उसको, हाँ पी सकते हैं पानी, पानी को अगर उबाल लिया है तो उसको बोतल में पैक करके ले जा सकते हैं, वो चलता है, हाँ दूध पानी चलेगा, पानी को ले जा सकता है, एक बोतल ले गए, शाम को आवश्यक पड़ा तो उस बोतल का पानी पी सकते हैं। औषध, औषध की क्या क्वेश्चन करूँ, पूरा औषध कहने से कैसे समझ में आएगा। कौन सी दवाई है? हाँ एलोपैथिक, यदि शुद्ध हो तो एलोपैथिक भी चल सकता है, अशुद्ध हो तो टालना चाहिए। अशुद्ध हो तो जहाँ तक टालना चाहिए। और आपको कोई गंभीर ऐसी परिस्थिति है कि लेना आवश्यक ही है, यदि ले लिया तो प्रायश्चित लिया जाता है, उसमें शुद्धा शुद्धि का ध्यान रखना है। डेली कंटिन्यू अशुद्ध है, ये परीक्षा की कि शुद्ध है कि अशुद्ध है, तो ऐसे किए बिना कैसे बताएंगे हम। तो वो जो ले रहे हैं वह प्राणी स्रोत है या केवल केमिकल स्रोत है, इतना तो देखना पड़ेगा। केमिकल स्रोत है तो कोई दिक्कत नहीं, प्राणी स्रोत है तो वो अशुद्ध है, नहीं लिया जाएगा, उसको पता लगाना चाहिए ना। पता लगा करके आप ले सकते हैं। हाँ, केमिकल स्रोत चलेगा पर प्राणी स्रोत नहीं चलेगा। प्राणी स्रोत जो भी है वो तो अशुद्ध ही है। देखो, आपको तो अपने रोगों के अनुसार कुछ दवाइयाँ अपने पास खोज के ही रखना चाहिए, ये शुद्ध ये अशुद्ध, इस प्रकार किस रोग में कौन सी दवाई अपने को ले सकते हैं, उनका नाम लिस्ट भी रखना चाहिए। हाँ, ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें भी निकली हैं बहुत सारी, घर बैठे उपचार एक पुस्तक है, घर का वैद्य, बहुत सारे हैं। ऐसे पुस्तकों को भी स्टडी करना चाहिए। उसमें के भाई घर बैठे उपचार तो एक आयुर्वेदिक रूप से घर में ही जो चीज़ें रहती हैं उनका यूज करके उस रोग को ठीक करना, लेकिन जो ये कुछ बीमारी ऐसी हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां नहीं चलती, परंतु यदि एलोपैथिक में चलती है तो उसमें शुद्धा शुद्धि का ख्याल रख करके आप उसमें उसको यूज में ला सकते हैं। ये डायबिटीज वगैरह क्यों होते हैं? शुद्ध खाना अभी तक खाए नहीं, और शुद्ध खाना शुरू करेंगे ना वो डायबिटीज भी कम हो जाएगा। कुछ अशुद्ध अपन नमक खाते हैं, नमक डेंजर है, वो लोन खाना चाहिए, उसमें औषधि शक्तियां हैं और शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसके लिए अनुकूल है वो। कुछ अशुद्ध चीजें हैं जो हम दिन भर खाते रहते हैं असंयम अवस्था में, अब तो शुद्ध खा रहे हैं, ताजा खा रहे हैं, तो कोई भी इतनी गंभीर बीमारी नहीं होगी। होती है तो अपने आप समस्या सामने आने पर उसका इलाज हो जाता है, विकल्प नहीं करना पहले से, दूर का पहले से विचार कर अभी से पीछे खिसकना ये ठीक नहीं। अभी रोग हुआ ही नहीं और होगा भी या नहीं ये भी मालूम नहीं, और रोग नहीं हुआ तो तब क्या करोगे आगे जाकर? अब दिन तो गए असंयम में, ऐसा भी हो सकता है, वृत्ति का पुण्य होता है, ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। ये संयम की महिमा होती है, पुण्य की महिमा होती है, पुण्यार्जन होता है उससे, ऐसे चमत्कार भी प्रकट होते हैं, मरते मरते बच जाते हैं। नहीं, सही में वृत्तियों को ऐसा होता है, शुद्ध आहार का परिणाम और पुण्य का प्रभाव। शुद्ध आहार करने से ही पुण्य बढ़ता है, इस पुण्य का प्रभाव ऑटोमेटिक चमत्कार बता देता है, हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। आत्मविश्वास करके अपने को आगे बढ़ना है, डरना नहीं। विद्यार्थी मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, एडमिशन ही नहीं करेगा क्या? फिर निरक्षरी रहना पड़ेगा। दोष लगता है तो एक आध बार लग जाता है, उसके लिए मार्ग है, उसको धोने का रास्ता है। घबराना नहीं, आगे बढ़ना। जहाँ समस्याएं थी आती है, हम है ना मार्गदर्शन करेंगे, क्यों घबरा रहे? उसके योग्य औषधियाँ, उसके योग्य व्यवस्था सब देखेंगे। वृत्तियों का ख्याल तो गुरु भी रखते हैं। हाँ, आयुर्वेदिक हैं, एलोपैथिक भी, ऐसे एक से एक बढ़कर के डॉक्टर हैं जिनको शुद्धा शुद्धि का पूरा ज्ञान है। हम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं है। आप लोगों को क्या मालूम है? कुछ भी नहीं। शुद्ध कौन सा है वो भी मालूम है? शुद्ध को भी अशुद्ध समझ के बैठे हैं। हर रोग की औषधियाँ शुद्ध भी हैं और अशुद्ध भी हैं। खोजना चाहिए, ढूंढ निकालना चाहिए, डॉक्टरों से चर्चा करना चाहिए, सब हो जाएगा। विकल्प नहीं करना, बढ़ना है। स्टार्ट। और कोई समस्या? सामायिक के बारे में? हाँ, सामायिक का अभ्यास मतलब कम से कम 47 मिनट, 48 मिनट सुबह शाम आत्मचिंतन में, स्वाध्याय में निकलना चाहिए। टाइम सुबह शाम, आप उठते ही, सुबह उठते ही सामायिक कर सकते हैं। कितने 4 बजे भी उठते हैं तो 4 से 5 सामायिक करो, 48 मिनट सामायिक करो, कम से कम 48 मिनट। कितने बजे उठते? 8 बजे? अभी तक तो 8 बजे उठते होंगे, क्योंकि 12 बजे तक तो टीवी देखना और 1 घंटा नींद नहीं आती, 1 बजे तो सोना, और उसके बाद तो 8 बजे उठना ही पड़ेगा। वो जो टाइम टेबल था उसको चेंज करना। अब तो इधर उधर फालतू समय नहीं गमाना। 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, कितना अच्छा है। 10 बजे तक फुर्सत हो जाते हैं कि नहीं सोने के लिए? हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा, स्वास्थ्य एकदम बढ़िया रहता है। जो 10 बजे सोते हैं और 4 बजे उठते हैं, तो कितने घंटे का नींद हो गया? 6 घंटे की नींद। 6 घंटे की नींद पर्याप्त है शरीर के लिए। कितने बजे सोते हैं आप लोग? 11, 10? बस 10 बजे ही सोना चाहिए, बिल्कुल ठीक टाइम है वो। 5:30 बजे उठते हैं, हाँ ठीक है। अब जरा जल्दी थोड़ा सा आधा घंटा चेंज करते करते 6 बजे, 6 घंटे का टाइम जो है ना सोने का पर्याप्त है शरीर के लिए। थर्टी एज के बाद, 30-40 के बाद तो 6 घंटे से ज़्यादा नींद आती ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 5-5.5 घंटे के बाद नींद खुल जाती है, और ठीक से नहीं सोएंगे तो कम नींद आएगी। सोना भी ठीक से चाहिए। ठीक से नहीं सोएंगे तो सपने आएंगे, सपने में ठीक नींद नहीं होती। आती है ना? बहुत आ रहे हैं ना, निश्चिंत हो गए। अब जीवन स्वस्थ बनता जा रहा है, आध्यात्मिक बनता जा रहा है, शांति मिल रही है। जिसके जीवन में शांति है उसके जीवन में नींद भी परेशान नहीं करती। ये शांति कहाँ से आ गई? जीने की कला हम सीख गए, इसलिए शांति मिल रही है, निश्चिंतता है, टेंशन मुक्त हो गए, एकदम फ्रेश हैं। सोने का समय निश्चित, उठने का समय निश्चित, सोच विचार हमारे बिल्कुल व्यवस्थित हो गए। इससे स्वस्थता बढ़ती है, और यह स्वस्थता धर्म के कारण से और विचारों के कारण से इसका शरीर पर इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि आपको गंभीर बीमारी तो कभी होंगे ही नहीं। यदि हो गए तो भी आप उसमें से आप पार हो जाएंगे, क्योंकि कर्म ऐसे होते हैं, परीक्षा लेने के लिए आते हैं। ये संयमी बने हैं, थोड़ा सा इनको डिस्टर्ब करें हम, क्योंकि जरा उपसर्ग वगैरह जीत ले, परिचय वगैरह जीत ले, इस प्रकार कर्म भी परीक्षा करने के लिए आते हैं। डरना नहीं अपने को, उस समय क्या विचार करना चाहिए, कोई गंभीर बीमारी आ गई तो क्या विचार करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए, ये बहुत वेदना है मुझे, रोग के कारण से मैं पीड़ित हूँ, ये पीड़ा दे रहा है, तो इसको ऐसा समझना चाहिए, ये कुछ दिन का मेहमान है, ये सादी शांत है, आज ही आया है, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना रहेगा, जाएगा, जाने वाला ही है, जाने के लिए ही आया है। शाश्वत रहेगा क्या, सिद्ध बनने के बाद भी पीछे पड़ेगा क्या? ऐसा नहीं, हम जब तक शरीरधारी हैं तब तक ये थोड़ा सा परीक्षा लेगा। कर्म के उदय से ही रोग होते हैं, अशुभ कर्म के उदय में, और कर्म के मंदोदय होने पर रोग मिट जाता है। इसलिए रोग कोई भी सादी शांत ही होता है, जब सादी शांत होता है ये विचार करेंगे तो ऑटोमेटिक शांति आती है, ठीक, और उस वेदना को सहन करने की भी ताकत आती है, आत्मबल बढ़ता है, मनोबल स्थिर होता है, ऐसा विचार करना चाहिए। जैसे पैर में कांटा चुभ गया, चुभते समय दर्द हो गया, निकालते समय दर्द रहता है और चलते समय दर्द रहता है, कब तक रहेगा? 1 दिन 2 दिन 8 दिन फिर भी रहेगा क्या? जिंदगी भर रहेगा क्या? नहीं। अब वेदना तो होती है, उस वेदना को समता भाव से, ये सादी शांत है, आया है तो शांत होगा, ऐसा विचार करते करते, समता भाव धारण करते हुए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान न करते हुए रोग के काल में समय व्यतीत करना चाहिए। सामायिक करने का काल पूछ रहे थे, तो कितने बजे उठते हैं ये पहला देखना है, उठते ही सामायिक शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 48 मिनट सामायिक करो, यदि टाइम बचता है तो थोड़ा स्वाध्याय भी करो। सामायिक में क्या करना, सामायिक में कुछ भी नहीं करना, यही करना, बस बैठे रहना, शांत बैठे रहना, बस प्रमाद ना आ जाए, निद्रा ना आ जाए, और जो भी विचार करना है वो सद्विचार करना, सद्विचार करना नहीं, वो ऑटोमेटिक होता भी है, शांत बैठेंगे ना तो ऑटोमेटिक विचार आने लगते हैं, कोई ना कोई विचार आते हैं, अब वो सहज रूप से ज्ञाता दृष्टा बनकर शांति से जो कुछ भी, और समय करते समय श्वास के तरफ भी ध्यान रखें, श्वास को ले रहे हैं बुद्धिपूर्वक उधर ध्यान जाए, छोड़ रहे हैं उस तरफ भी ध्यान जाए, और जो कुछ भी विचार ऑटोमेटिक हो रहे हैं उनको होने दें। अशुभ विचार यदि आते हैं तो उसमें भी हर्ष विषाद नहीं, और शुभ विचार आ रहे हैं तो उसमें भी हर्ष विषाद नहीं, अपना मन वहां गया। एक बार गए थे, कहाँ गए थे, एक बार कत्लखाने में गए थे, क्या करने वहाँ पर क्या है देखने, तो वहाँ प्राणी कट रहे थे, वही ख्याल में आया आपको, बुरा क्या है, आने दो ना, उसको ज्ञाता दृष्टा भाव से देखो, वहाँ दया करने के लिए छटपटा रहा था मन, यहां पर तो वो सहज रूप से ख्याल आ रहा है, एक बार ऐसा हुआ, एक का प्रश्न था, महाराज सामायिक करते समय हम भगवान को दृष्टि के सामने रखना चाहते हैं और वो तो आते नहीं, भगवान ठहरते नहीं और कुछ गलत ही आता है, और आता है तो वो जाता नहीं। तो हमने पूछा कि क्या आता है आपको, तो कहना उचित नहीं, गलत आता है तो कहना उचित नहीं, ऐसी कौन सी बात है। तो उन्होंने कहा कि कह तो सकते हैं लेकिन भगवान और उसका बिल्कुल विरुद्ध है वस्तु, वो तो आना नहीं चाहिए, अभी अभी भगवान दिख रहे थे और वो क्या था उनका, वो नए चप्पल पहनते थे और वो कीमती थे कीमती थे चप्पल, और उनको बहुत व्यवस्थित रखती थी वो, क्योंकि चोरी ना हो जाए, कोई पहन करके चले ना जाए, तो मंदिर जब भी जाते तो वही चप्पल पहन करके जाते, वैसे तो जाना नहीं चाहिए लेकिन मंदिर जाते समय चप्पल पहन करके जाते थे, और मंदिर के बाहर उतार करके ऊपर जाते कि 10-15 मिनट सामायिक करके आऊँ, माला फेर के आऊँ, भगवान को ध्यान, भगवान का ध्यान करके आऊँ, इस प्रकार सद्भावना से जाते थे, लेकिन चप्पल के प्रति अति आसक्ति थी ना, तो वो कोई पहन करके चले जाए तो क्या होगा, इस प्रकार के विकल्प, और वो चप्पल ही दिखती थी। वही ध्यान, और एक बार आ गए तो उसको हटाकर भगवान को बिठाने के लिए कोशिश करती तो वो हटते नहीं थे चप्पल। एक मानसिकता बन जाती है, जिसको हम बिठाना चाहते हैं वो बिठा नहीं सकते और जिसको हटाना चाहते वो हटते नहीं, ऐसा मानसिकता हमारी होती है। किसी व्यक्ति से ये कहो वहां पर अंधेरा है मत जाओ, तो व्यक्ति अंधेरा है मत जाओ कहा तो कुछ ना कुछ वहां है, या तो सांप हो सकता है या तो कोई खतरा है, तो व्यक्ति का मन उधर ही केंद्रित रहेगा। अब व्यक्ति का मन ये नहीं कहेगा कि मैं प्रकाश में बैठूं और अंधेरा में न जाऊं, अंधेरा में मत बैठो इतना क्यों कहा, मैं रोज जाता था वहां लेकिन आज ही ऐसा क्यों कहा, तो मन ज्यादा वो अंधेरा में ही जाने का प्रयास करेगा। होता है ये, जहां मत जाओ कहते हैं ना, मन वहीं जाता है, और वहां पर जाकर के आओ कहने से नहीं जाऊंगा, आप कौन कहने वाले, मन बहुत टेढ़ा है, मन ऐसा है कि जहां जाओ कहते हैं उसको जाने का चाहता नहीं, और मत जाओ कहने से जाने के लिए तैयार हो जाएगा। मन की परिस्थिति बहुत विचित्र है, तो इसलिए मन को कोई टेंशन नहीं डालना। अगर ये मन को टेंशन डालोगे कि मैं भगवान को ही देख करके ध्यान करूंगा, भगवान आने वाले नहीं, सहज रूप से भगवान आते हैं ठीक, नहीं आते हैं तो भी ठीक, अब ध्यान में क्या बिगड़ने वाला था, चप्पल आ रहे हैं आ रहे हैं, क्या बिगड़ रहा है, वो क्या उसमें क्या पाप कर्म का बंध होगा क्या, क्या होगा, आज चप्पल का ध्यान कर रहे हैं इसलिए बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा अनर्थ है, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, चप्पल दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं, मन जिसमें कंट्रोल हो रहा है हो रहा है, जहां रुक रहा है रुक रहा है, देखो उसको, जानो देखो बिगड़ो मत, चप्पल को देख करके भावों को नहीं बिगाड़ना है, चप्पल दिख रहे हैं तो दिखने दो, वो एक ज्ञेय पदार्थ है, मैं ज्ञान हूं, सिद्ध भगवान के ज्ञान में तीन लोक सब आ रहा है तो किसी की चप्पल नहीं आ रही क्या दुनिया के सारे जितने चप्पल है वो सब झलक रहे हैं सिद्ध भगवान के ज्ञान में, तो फिर चप्पल तो झलकना नहीं चाहिए, गलत चीजें हैं वो। हाँ, वो भी झलकता है। परंतु जिसने कीमती चप्पल पहना है और चप्पल में आसक्ति है, चप्पल के प्रति राग है, हर्ष विषाद है, उनके लिए तो कर्म बंद हो रहा है। सिद्ध भगवान के लिए कहाँ कर्म बंद हो रहा है? हाँ, सिद्ध परमेश्वर निरंतर चप्पल ही चप्पल जानते हैं, उनका ज्ञान तो सर्वगत है, सर्वगत। वो चप्पल को भी जानता है और खुद को भी जानता है और सबको भी जानता है, हर चीज दुनिया का एक एक परमाणु जानता है और प्रति सेकंड जानता है। परंतु कर्म बंद नहीं कर रहा है ना, अनंत सुख में लीन है ना सिद्ध भगवान। चप्पल को जानते हुए भी अनंत सुखी कैसे? रागादि भावों का न होना ही सुख है, और सामायिक में बैठ करके कुछ न करना यही करना है। ज्ञान में जो कुछ आता है, हर्ष विषाद रहित होकर उनको जानना, देखना, जानना, देखना, इतना ही करना। जो सहज आ रहा है उसको जानना और देखना, इसका नाम सामायिक। वस्तुओं को नहीं रोकना है, राग द्वेष हो रहे हैं या नहीं इतना ही संशोधन करते हुए बैठना है। राग द्वेष छोड़ करके बैठो बस, ज्ञान में कुछ भी आने दो, विचार में कुछ भी आने दो, मन कहीं भी जाने दो, मन को कहीं भी दौड़ने दो, चिंता मत करना, उससे कोई हानि नहीं है। हाँ, वही धर्म ध्यान है। राग द्वेष मुक्त ज्ञान को ही धर्म ध्यान कहेंगे ना। हर्ष विषाद राग द्वेष मुक्त है, तो हर्ष विषाद राग द्वेष मुक्त ज्ञान आनंद की ही अनुभूति में रहता है। अब उस ज्ञान में कुछ भी वस्तु, कोई भी वस्तु क्यों नहीं तैर रहा हो, और तैरने वाली वस्तु आपको कुछ नहीं कर सकती, वो कर्म बंध का कारण नहीं है। वस्तु कर्म बंध का कारण नहीं, हमारे उसके प्रति होने वाले रागादि भाव बंध के कारण है। आजकल देखो परिस्थिति ऐसी है, अज्ञान कैसा होता है, अज्ञानी होने के कारण से कोई भी ध्यान नहीं कर पाते। कर तो सकते हैं सभी लोग, लेकिन ध्यान करने की विधि ही मालूम नहीं, ध्यान की परिभाषा भी मालूम नहीं, ध्यान किसे कहते हैं। क्या कोशिश करते हैं कुछ लोग, ये है कि मैं मन को बांध करके एक जगह रखूं और इसको ध्यान समझते हैं, मन की एकाग्रता का नाम ध्यान, इतना ही मालूम है। परंतु मन कहाँ एकाग्र हो इसका कोई नियम तो बताया नहीं, किसमें एकाग्र हो इसका नियम तो बताया नहीं। मन कहीं भी एकाग्र हो सकता है, कहीं भी किसी भी ज्ञेय पदार्थ में एकाग्र हो सकता है, चाहे वो चप्पल हो, चाहे भगवान हो, चाहे कोई अन्य वस्तु हो, अमृत हो चाहे विष हो, अपना ज्ञान दोनों को जानने वाला हो इतना ही, उसमें राग द्वेष करने वाला न हो। देखो श्वास लेना और छोड़ना, इसी पर आप एकाग्र होना चाहते हैं तो उस पर भी एकाग्र हो सकते हैं, वो भी ध्यान की कोटि में ही आएगा, क्योंकि उस काल में आपको रागादि भाव नहीं है, केवल श्वास के ऊपर दृष्टि रखा है, वो कैसे आ रहे, श्वास आ रहा है और कैसे जा रहा है, इतना ही देख रहे हैं और जान रहे हैं। ये भी धर्म ध्यान है और यही सामायिक है। राग द्वेष मुक्त अपने श्वास पर एकाग्रता, ये भी ध्यान की कोठी में आएगा, क्योंकि उसके उस काल में कर्म का बंध नहीं है, अशुभ कर्म का बंध नहीं है। अशुभ कर्म का बंध कब होता है? जब हमारे भाव बिगड़ेंगे और राग द्वेष उत्पन्न होगा, और फिर वो भगवान को लेकर के भी हो रहा हो कि हमारी मूर्ति, हमारा मंदिर, वो हमारे उसमें दूसरे का झगड़ा, दूसरे को लेकर के भगवान को निमित्त बना करके राग द्वेष करता रहता है, भगवान को निमित्त बना करके भी हमारा मन जो है पाप कर्म का बंद कर सकता है। दूसरे के निमित्त से अपने परिणामों को बिगाड़ना सबसे बड़ी अज्ञानता है। दूसरे को निमित्त बनाओ लेकिन राग द्वेष मत करो। दूसरे का निमित्त के बिना हमारा ज्ञान तो रहता ही नहीं कभी। आप ये करके बताओ कि अपने ज्ञान को शून्य बना करके बताओ। विचारहीन होना चाहिए, कुछ भी विचार नहीं रहना चाहिए। एक सेकंड एक मिनट के लिए भी करके बताओ, नहीं हो सकता ये। क्योंकि आत्मा का लक्षण ज्ञान है, ज्ञान का लक्षण विचार करना। ये विचार तो निरंतर चलेगा, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकेगा। ये रोक नहीं सकते अपने विचार को। रोकने के लिए चले जाओगे तो रोकते समय में भी मैं रोक रहा हूं ये विचार रहेगा। मैं रोकने जा रहा हूं और ये नहीं रुक रहा है, ये विचार हो रहा है कि नहीं? और फिर रोकोगे कैसे? कुछ भी नहीं करोगे तो भी कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि ध्यान के काल में मन को कहीं भी टिकाने का विचार मत करो। मन को खुला छोड़ो, कहीं भी जाए वो। आकाश के पतंग के समान इसको आकाश में छोड़ो, किधर किसी दिशा में भी जाने दो उसको। डोरी हाथ में रहे। और ये डोरी हाथ में क्यों? राग और द्वेष नहीं करना है। वीतरागता की डोरी हाथ में पकड़ो, उसमें से राग द्वेष हटाओ। पतंग बहुत अच्छा है, डोरी बहुत अच्छी है, ये भी राग द्वेष छोड़ो। बस डोरी पकड़े रहो, पतंग उड़ने दो, चुपचाप बैठो पतंग को देखते हुए, डोरी को भी देखते हुए बैठो और पतंग को भी देखते हुए बैठो। राग द्वेष ना हो, इसका नाम ध्यान है। चाहे उस ध्यान को श्वास पर टिका दो, चाहे पतंग पर टिका दो, चाहे डोरी पर टिका दो, क्या शरीर पर टिका दो, क्या सिद्ध क्षेत्रों में टिका दो, चाहे भगवान की मूर्ति में टिका दो, कहीं भी टिका दो, हजार लाख करोड़ जितने भी स्थान हैं कहीं भी ले जाओ, उसको मना नहीं है। किंतु उसके साथ, उस धारा, ज्ञान धारा के साथ राग द्वेष न रहे, इतनी सावधानी। और मन और ज्ञान का ये विशेषता है, ज्ञेय में चला जाता है और राग द्वेष करता हुआ बैठ जाता है। ये अनादिकालीन संस्कार है, इस संस्कार को खत्म करना है। क्योंकि ये कला मालूम नहीं थी और ये अभ्यास भी नहीं था, हमने ऐसा प्रयत्न भी नहीं किया है कभी। कैसा प्रयत्न? राग द्वेष से हट करके उस ज्ञान को ज्ञेय में लगाना, लगाते जाना, कहीं भी लगाते जाना, ये हमने अभ्यास ही नहीं किया। ज्ञान में राग द्वेष होते हैं यही मालूम नहीं था, और उन राग द्वेषों को रोका जा सकता ये भी मालूम नहीं था, और राग द्वेष क्या है ये भी मालूम नहीं था, ज्ञान क्या है ये भी मालूम नहीं था, आत्मा क्या है ये भी मालूम नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, हम करते तो सब थे, राग द्वेष करते तो सब थे, लेकिन ये इस प्रकार से जो हो रहा है ये बुरा है अच्छा नहीं है ये मालूम नहीं था। सामने बोर्ड लगा है ना, पता चला? अनादिकाल से है ये, अनादिकाल से हमारा ज्ञान ही राग द्वेष कर रहा है। और ये क्यों करता है, कैसे करता है और इसको हटाने का उपाय क्या है, इस संबंध में कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी। अब ये जानकारी मिल गई है, अब प्रैक्टिकल करना है, अभ्यास करना है। कितना? सुबह उठते ही बैठ जाओ, शांत, एकदम शांत बैठ जाओ, अपने ज्ञान को ब्रह्मरंध्र पर ले जाओ, शांत हो जाओ, एकदम शांति मिलती है। और वहां टिका दो और फिर विचार में जो भी आ रहा है आने दो, उसको रोको नहीं, उस सीरियल को, उस रील को भगाना भी नहीं और रोकना भी नहीं, जो चल रहा है उसको देखते रहना बस। ऐसा अभ्यास करना, देखते समय ज्ञेय पदार्थ तो आते हैं, अब राग द्वेष नहीं करेंगे। वो जितने समय के लिए आपने राग द्वेष नहीं किया उतने समय तक आपका धर्म ध्यान हो गया। यही स्वाध्याय है, यही सामायिक है। सामायिक करने के लिए बहुत विशेष ज्ञानी होना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो निरक्षरी थे उनको भी केवल ज्ञान हुआ है, शिवभूति मुनि महाराज को, निरक्षरी थे उनको भी केवल ज्ञान हुआ है। क्या किया उन्होंने? अपनी आत्मा को परमार्थ में लगाया, ख्याति लाभ पूजा से, पूजा में नहीं। अपने जो व्रत हैं, अपनी जो तपस्या है, अपने जो भाव हैं, ये पर के लिए नहीं है, ये सब कर्म निर्जरा के लिए है, ये परमार्थ है। और उनको कुछ भी मालूम नहीं था, इतना ही मालूम था कि हमारे ज्ञान में राग द्वेष उत्पन्न होने नहीं देना, इतना ही मालूम था। तो ख्याति लाभ पूजा से मुक्त ये जो विचार है, ये परमार्थ को साधता है। ख्याति के भाव, ये भी तो राग है ना, किसमें ख्याति पा रहे हैं? लोक में, लोकेशना में, लोक की ख्याति पकड़ के क्या करना है? उससे क्या मोक्ष सिद्ध होगा? उससे क्या कर्मों का बंधन टूटेगा? हम जो भी धार्मिक क्रिया करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, कुछ भी, वो सभी आत्मसिद्धि के लिए, उससे बाह्य किसी ख्याति को साधना, नाम को कमाना, ऐसे विचार नहीं आना। ऐसा मन में लाना भी नहीं कि मैं सामायिक कर रहा हूं तो सभी देखे कि मैं वृत्ति हूं। तो ये तो ज्ञान राग द्वेष मुक्त नहीं है, वो ख्याति में पड़ा हुआ है। अपने लिए करना, जो कुछ करना है स्वयं के लिए और सहजता से करना है। पर के लिए नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए ही हो रहा है, पर का त्याग। मैं एक भी धार्मिक अनुष्ठान पर के लिए नहीं करूंगा। हाँ, ये परमार्थ की सिद्धि है। और यदि पर के लिए हो रहा है तो ज्ञान राग द्वेष मुक्त नहीं है। फिर राग द्वेष मुक्त नहीं है तो फिर कितने साल भर भी आप खड़े रहो सामायिक में, तो बाहुबली भगवान जैसा केवल ज्ञान नहीं होने वाला है साल भर। वो पर में तो अटक रहा था ना, उनका ज्ञान कहाँ अटक रहा था? पर में, पर का ही विकल्प था, वो आ रहा था जा रहा था, ऐसे एक साल निकल गया लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। ये भी एक बीमारी है, साल भर तक लगा। अब वो क्यों, क्योंकि सहन करने, सहज सहन करने की सब क्षमता है, कष्ट तो कुछ है ही नहीं, ठहरे कितने दिन निकले पता नहीं, लेकिन वो विकल्प ताजा है। राग द्वेष कभी बूढ़े नहीं होते। हम तपस्या करने वाले एक साल के बूढ़े हो गए, वृद्ध हो गए, और ये दिखाई नहीं देता। राग द्वेष मन में अगर है तो वो प्रति समय यंग रहते हैं। देखो एक उदाहरण, किसी ने आपको बुरे वचन कहे थे और उनसे झगड़ा हो गया, और वो एक साल के बाद व्यक्ति सामने आया एक साल के बाद आया और वही झगड़ा तुरंत याद ताजा होता है कि नहीं? देखो कितना यंग है, वो भूला नहीं है। राग द्वेष यंग ही रहते हैं अंदर, 10 साल बाद भी मिलेंगे तो वो एकदम ताजा होकर के खड़ा रहता है उनके सामने, लेकिन शरीर तो बूढ़ा हो गया 10 साल का, उठने बैठने को शक्ति भी नहीं है, लेकिन राग द्वेष को बहुत शक्ति है। वो तुरंत खड़ा हो जाता है, ये आ गया है कहता है। तो शरीर में सहनशीलता है, सहते जा रहे हैं सहजता से, लेकिन राग द्वेष को छोड़ने का जो पुरुषार्थ होना चाहिए, जैसे ध्यान जाना चाहिए उस ओर कि मैं गलत कर रहा हूं, इस ओर ध्यान नहीं गया और उसमें एक साल निकला। एक साल निकला उसमें, वेस्ट हो गया क्या? नहीं, केवल ज्ञान के लिए कितना समय लग सकता है वज्रषभ नारायण सनंदधारी को? केवल अंतर्मुहूर्त पर्याप्त है। भरत को, उनके बड़े भाई को हुआ कि नहीं हुआ? वैसा इनको क्यों नहीं हुआ? विकल्प, ये विकल्प जो है यंग रहते हैं हमेशा। राग द्वेष के विकल्प ये बूढ़े नहीं होते कभी भी, हमेशा ताजा रहते हैं, फ्रेश। ये जब भी देखेंगे इनका बचपन ही देखने में आता है तो एक ही कला हासिल कर लो जीवन में, उठे बैठे जाएं चलते फिरते, हर समय राग द्वेष से ज्ञान को मुक्त रखो। सभी गेय पदार्थ है क्या? नहीं है? आपके बच्चे गेय पदार्थ हैं, आपके घर के सारे सामान, बर्तन चमचा ग्लास, सब गेय पदार्थ है क्या? नहीं। चेतन है क्या अचेतन? वो अचेतन, कुछ चेतन भी है और कुछ अचेतन। नौकर, बच्चे, परिवार, मित्र, पशु, ये सब चेतन है। चेतन को चेतन है इतना ही जानो, और उनके साथ राग द्वेष नहीं। गेय को गेय के रूप में ही जानो, वो राग द्वेष करने के लिए नहीं है, वो केवल जानने और देखने के लिए है। परंतु ऐसा कम होता है, क्यों? हमने इसका प्रयत्न आज तक नहीं किया है। संस्कार अनादिकाल के जैसे थे वैसे अभी हैं, और हम इसको जान करके कुछ नया करने के लिए नहीं जाएंगे तो ये ऐसे आगे बढ़ेंगे। किसी ने आपको कोई चीज दे दी तो लेते ही हमारा ज्ञान राग द्वेष पूर्वक ही लेता है, राग द्वेष पूर्वक ही रहता है। लेते समय देते समय देखना, परीक्षा करना, अपने आत्मा के ज्ञान की परीक्षा करना, संशोधन करके देख लेना। एक व्यक्ति सामने से 1 किलो चांदी दे रहा है तो भी राग द्वेष कर ही रहा है हमारा मन, क्यों? क्योंकि इसने मिलावट तो नहीं किया इसमें उसमें संतोष रहता ही नहीं मिलावट तो नहीं किया है, ये डुप्लीकेट तो नहीं है, ये प्योर है क्या? नहीं, क्योंकि ये खराब व्यक्ति हो सकता है, खराब व्यक्ति हो मिलावट भी दे सकता है ये, तो ऐसा करता रहता है। परीक्षा करो, संशोधन करो, चांदी खरीद रहे हो खरीदो, लेकिन उसमें राग द्वेष से बच करके उसको खरीदो। वो चांदी ज्ञेय पदार्थ है, हमारा ज्ञान का विषय है, और वो ज्ञेय है, वो जानने के लिए मिला है, जानने के लिए सामने आया है, उसको केवल जानो। उसको निमित्त बनाकर राग द्वेष मत करो, हर्ष विषाद मत करो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस समय में भी आप सामायिक कर रहे हैं, वो भी सामायिक ही है। सामायिक में क्या करते हैं, बैठ करके आप राग द्वेष नहीं करते, तो फिर यहां खरीदते समय राग द्वेष नहीं कर रहे, तो उस सामायिक में और इस सामायिक में अंतर क्या है? यही सामायिक है। अपने ज्ञान को प्रति समय राग द्वेष से मुक्त रखना, यही सामायिक है। और ये स्टार्ट करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, शुरू आज से ही। 4 बजे उठ गए, शुरू। प्रतिमाओं की सफलता इसमें है। और सबसे ज्यादा कर्म निर्जरा ज्ञान को राग द्वेष से बचाने में है। अपन उपास करते, अष्टमी चतुर्दशी एक आसन करते, उपास करते, कुछ भी करते, क्यों करते? क्या मतलब? अष्टमी आया है इसलिए करते, और नहीं आता तो नहीं करते। वो आ गया है इसलिए कर रहे हैं हम। क्यों कर रहे हैं कुछ पता नहीं हमको। अष्टमी का दिन आ गया और उस दिन हम एक आसन करना निश्चित कर लिया। उद्देश्य क्या? जिस निमित्त से राग द्वेष हो सकते थे उस निमित्त से हमें दूर होना है। भोजन करने की इच्छा, क्या ये राग नहीं? तो उस राग को ही रोकने के लिए हमने भोजन नहीं लिया, एक दिन का भोजन छोड़ दिया। तो वस्तु से बच गए, तो वस्तु से ही बचना है ऐसा नहीं। राग द्वेष से तो हमेशा बचना है, वस्तु से तो अष्टमी के दिन बचना है। अष्टमी के दिन उपास कर लिया, नवमी के दिन का विकल्प पहले ही जुटा लिया कि कल क्या क्या खाना है। ऐसा मन विचार कर सकता है कि नहीं? देखो कितना डेंजर है वो। आगे का विचार आज अष्टमी से पहले सप्तमी को ही करता है, नवमी का विचार सप्तमी के दिन चलता है, फिर कल के दिन उपवास होता है, पारना के दिन क्या लेना है ये पहले फिक्स है। सब में समता भाव रखना। मान लो नवमी के दिन पारना कर रहे हैं तो पारना में भी राग द्वेष नहीं, अष्टमी के दिन राग द्वेष नहीं, सप्तमी के दिन ये विचार भी नहीं कि पारना के दिन क्या करना क्या नहीं करना। तबीयत को देख करके अगर तबीयत के लिए जो अनुकूल वस्तु है उसको लेंगे, पर इच्छा से मुक्त रह करके ही लेंगे। मैं खाऊं ये इच्छा नहीं, मुझे देना है। मैं दाता हूं, मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं दाता हूं। किसके लिए दे रहे हो? दाता बनकर शरीर के लिए दे रहा हूं, क्योंकि शरीर इस अन्न के बिना रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता, इसलिए देना पड़ रहा है। खाने की इच्छा बिल्कुल नहीं, तो इच्छा से दूर रह करके भी तो भोजन कर सकते हैं ना। तो जब आप इच्छा से दूर रहकर भोजन करते हैं, आप दूसरे की पूर्ति करते हैं, स्वयं की कोई उसमें इच्छा नहीं। और आत्मा को भूख तो है ही नहीं, निश्चय से कुछ नहीं चाहता है, ये किसको चाहिए? शरीर के लिए चाहिए, परंतु शरीर के लिए देना रहता है, केवल देने का कर्तव्य करना रहता है, परंतु आत्मा कितना राग द्वेष में पड़ते हुए देता है देख लो। थोड़ा उसमें से कुछ कम दिखा, ये इसमें नमक नहीं क्यों नहीं डाला है, गुस्सा भी करता है। ये कौन कर रहा है, आत्मा कर रहा है कि शरीर कर रहा है? जिसको दे रहे हैं वो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ भी राग द्वेष नहीं कर रहा है, और आत्मा क्यों राग द्वेष करता है? ये संस्कार है, ये अनादिकालीन संस्कार है। इन संस्कारों को तोड़ने के लिए उपास किया जाता है। उपास करते करने करने के दिन भी वीतराग, पारणा के दिन भी वीतराग, और पहले सप्तमी के दिन भी वीतराग। भोजन करते हुए भी राग द्वेष से मुक्त रह करके करना ये अच्छा, क्या राग द्वेष करते हुए करना ये अच्छा? तो ये उपवास के समान ही है। राग द्वेष अगर खाते समय नहीं है तो ये उपवास के समान है। आप तो केवल ट्रांसफर कर रहे हैं, भोजन पदार्थ को शरीर में ट्रांसफर कर रहे हैं, खुद को कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं है राग द्वेष आदि का। ऐसे जीवन जीने की कला, ये अगर ये मेन है, ये मतलब सर्वोच्च हाईएस्ट शिखर है ये। ये अगर कला आ गई तो बहुत कर्म कम बंधेंगे, बहुत सारे कर्मों की निर्जरा होती रहेगी। इच्छा निरोधो तपः, इच्छा का निरोध करना ही तप कहा है। पहले इच्छा का निरोध करो, भले कहना खाना पड़ रहा हो, इच्छा का निरोध करके खाओ। भोजन के प्रति आत्मा को इच्छा ना हो, ये देना पड़ रहा है ऐसा लगे, लगना चाहिए कि नहीं? लेकिन ऐसा कभी लगा है कि इसको देना पड़ रहा है, मुझे तो इच्छा नहीं है, ये साधना कभी हुई है? कभी एक दिन भी नहीं किया। किया क्या है, खाते हुए राग द्वेष करते हुए ही दिया है, और वो राग द्वेष का फल किसको मिला है? आत्मा को। भोजन किसको मिला है? शरीर को। पेट किसका भरा? शरीर का। और राग द्वेष कर्म जो बंधे वो शरीर को नहीं बंधे, वो तो आत्मा को बंधे। तो दोष किसका इसमें, शरीर का या आत्मा का? आत्मा का दोष है। हाँ, वही तो कह रहे हैं, यदि रुचिकर भी है तो भी राग द्वेष नहीं करना, और रुचिकर नहीं भी है तो भी राग द्वेष नहीं करना। यदि आपको पसंद नहीं है तो राग द्वेष मुक्त होकर के उसको हटा दो, मन में हर्ष विषाद नहीं उसके प्रति, आपके लिए प्रतिकूल है। जैसे मान लो आप अष्टमी के दिन उपवास किए और नवमी के दिन आहार ले रहे हैं, और उपवास के दूसरे दिन जो खाना चाहिए वही खाएंगे तो शरीर में स्वस्थता रहेगी, नहीं तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता कोई संदर्भ। तो उस समय में क्या सोचना चाहिए? हमारी सोच ही सब कुछ है, हमारी सोच ही सामायिक है, हमारी सोच ही तप है, हमारी सोच ही धर्म है, हमारी सोच ही संयम है। क्या सोचे? अब प्रतिकूल वस्तु डाल दिया है, राग द्वेष मर को सभी खाओ, ऐसा है क्या? राग द्वेष मत करो, जो कुछ डाला है चुपचाप खाओ, ऐसा नहीं। इस शरीर के लिए जो प्रतिकूल वस्तु है उसको अलग करो, ये राग द्वेष नहीं है। जो अनुकूल वस्तु है उसको देव, ये राग द्वेष नहीं है। हाँ, इंद्रिय विषय अच्छे अच्छे मिले हैं, थाली में आए हैं, मान के चले आपका नमक का त्याग है, लोन का त्याग, नमक का त्याग है, और उसमें डला हुआ है, क्या करोगे? त्याग है, आपको नहीं चाहिए है तो निकाल के रखो। राग द्वेष करोगे, ये इसमें नमक क्यों डाला है? उनसे लड़ोगे, उनको विकल्प में लेओगे कि इतना भी नहीं समझते कि हमारा वो त्याग है और ये डाल रहे हैं। विकल्प नहीं करना, मान के चले राग द्वेष नहीं है और एक एक ग्रास खाने में आया, इच्छा पूर्वक तो नहीं खाया ना? क्या इच्छा पूर्वक खाया? इच्छा पूर्वक खाते हैं तो प्रायश्चित के भागीदार, क्योंकि कर्म बंद हुआ है। प्रायश्चित किस लिए होता है? बंद हुए कर्मों को धोने के लिए। इच्छा रहित एक ग्रास खा भी लिया तो कुछ भी दोष नहीं लगा है, चिंता क्यों करते? अब दूसरा ग्रास लोगे क्या? नहीं नहीं लेंगे, क्योंकि त्याग था और एकाएक आ गए तो आ गए तो आ गए, क्या करेंगे? अब उपवास थोड़ी करेंगे, अब थोड़ी शरीर को व्यर्थ रूप से दंड देंगे। शरीर को क्यों इतना कष्ट? आत्मा को कष्ट देना, हाँ, अनजान में हो तो क्षम्य रहता ही है। सिर्फ इतना ही है कि अनजान में होने के बाद राग द्वेष हुआ है तो प्रायश्चित लेना, खाने पर भी लेना और नहीं खाने पर भी, खाने की इच्छा हुई है तो भी लेना। सपने में खाने की इच्छा हुई, सपने में खा लिया है तो भी प्रायश्चित लेना। उसमें अगर आसक्ति का भाव हुआ है तो प्रायश्चित लेना चाहिए। जैसे चलते समय जीव को देख करके चल रहे थे, पर जीव ही उड़ करके आया और पैर में फंस करके मर गया। चलने वाले को पाप लगा है क्या? तो जीव मरने पर भी क्यों नहीं लगा? तो हमारा प्रमत्त योग नहीं था। प्रमत्त योग क्या चीज है? ये हम असावधान नहीं थे, तो सावधानी से चल रहे थे, जीव मर गया तो भी पाप का बंध नहीं है। और हम एक ग्रास ले लिए, ये नमक है पता चला, राग द्वेष नहीं करना, नमक है पता चला, अब हम दूसरे ग्रास नहीं लेंगे, लेने की इच्छा भी नहीं करेंगे और जो आया है उसके प्रति राग द्वेष भी नहीं करेंगे। ये है इंद्री विजय। रस में ही राग द्वेष नहीं होना, ये इंद्री विजय। खा रहे हैं कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन खाने की आसक्ति उसमें नहीं होना। आसक्ति पूर्वक जो काम होते हैं ना, वो सब बंद के कारण, और अनासक्त रह करके उसमें सहजता, समता, सरलता, ठीक है ये एक वस्तु है, ज्ञेय है, शरीर के लिए आवश्यक है क्या अनावश्यक है इतना ही देखना, मेरे लिए तो कोई भी आवश्यक नहीं और अनावश्यक भी नहीं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, शरीर को सुरक्षित रखने का, शरीर को जीवित रखने का एक साधन है अन्न, और शरीर धर्म के अनुसार किस प्रकार का अन्न इसको चाहिए, इतना विचार आत्मा को करना चाहिए, शरीर तो करेगा नहीं। शरीर किससे ठीक रहता है उस चीज को देना, और देते समय राग द्वेष मुक्त रहना, इच्छा से मुक्त रहना, ये देना पड़ रहा है, शरीर को देना पड़ रहा है, मैं दाता हूं और ये पात्र है। देने वाला दाता राग द्वेष क्यों करे? खाने वाला कोई और है, दाता खा नहीं सकता, पात्र खाता है, पात्र को देता है, दाता देता है, पात्र को देता है, पात्र की पात्रता को समझकर देता है। पूछो,
के बारे में इतना क्यों सोचता है कि इसको क्या खाना चाहिए?
इसलिए सोचता है इसके सहारे से इसके घर में रहना पड़ रहा है। अगर पड़ोसी उस जिस किसी को भी खाने से बीमार पड़ गया तो उस बीमारी का अनुभव आत्मा भी करता है। भुकार तो इसको भी आता है, संकट तो इसको भी है, दुख तो इसको भी है, अशांति इसको भी है। तो ये दो मित्र हैं, एक अशांत है तो दूसरा भी है, और एक शांत है तो दूसरा भी शांत है। ये दोनों मिलके रहते हैं, ये जुड़वा है। शरीर एक है और आत्मा नहीं, आत्मा एक है और शरीर भी एक है, लेकिन आत्मा दो है एक शरीर है, ऐसे जुड़वा उत्पन्न होते हैं ना। सिर दो है और पूरा शरीर नीचे का एक है, तो एक शरीर में होने वाले सुख दुख को दोनों को अनुभव करना पड़ता है कि नहीं। अब बाजू वाले को जाने की इच्छा है तो हमको भी जाना पड़ेगा ना, और हमारी इच्छा जाने की नहीं है तो वो मानेगा नहीं, और शरीर एक है, और दोनों में झगड़ा हो जाए तो क्या होगा। एक शरीर और झगड़ा क्यों, एक चाहते थे कि समय से कर जाना और एक चाहते थे कहाँ जाना, श्रवण बिल्कुल जाना। मैत्री भाव शरीर के साथ आत्मा का अनादिकाल से है, और इसलिए एक दूसरे में जो घटित घटनाएं होती हैं दोनों फल भोगते हैं उसका। क्रोध आया तो शरीर पर भी इफेक्ट आता है कि नहीं, आता है क्रोध आत्मा को, पर परिणाम बुरा परिणाम शरीर पर भी पड़ता है कि नहीं। हार्ट अटैक क्या चीज है, हाँ, भय से या अति हर्ष से अति क्रोध से हार्ट अटैक होता है कि नहीं। इसका आत्मा का ये बुरा परिणाम किस पर पड़ रहा है, शरीर पर, शरीर नष्ट हो गया, बष्ट हो गया। और अन्न देते समय आत्मा अगर विवेक के साथ इस मित्र को अन्न व्यवस्थित खिलाएगा, जो आवश्यक है उसी को खिलाएगा, और इच्छा रहित होकर खिलाएगा, तो ये स्वतंत्रता मिलने वाली है दोनों की। और स्वयं इच्छा सहित राग द्वेष सहित होकर के खिलाता पिलाता रहेगा तो ये मित्रता टूटने वाली नहीं है। अनादिकाल तक शरीर के साथ आत्मा का संबंध था, है और रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा धर्म इच्छा निरोधो तपः, हर वक्त हम इच्छाओं से मुक्त रहे, हर वक्त हम गेय पदार्थों को, चेतन अचेतन दो ही प्रकार के गेय पदार्थ हैं यहाँ आंखों से दिखाई देने वाले, इन पदार्थों को देखकर हर्ष विषाद नहीं करना, परिणामों को संभालते हुए उनको काम में लेना, चाहे वो भोजन हो, चाहे मित्र हो, चाहे नौकर हो, चाहे परिवार के लोग हों, इनको गेय ही समझो केवल, ये जानने लायक ही हैं, इनको देखकर हर्ष विषाद करना मेरा कर्तव्य नहीं है। ये साधना आज तक नहीं की, इसलिए संसार में है। समय हो गया, संडे को, कल संडे, नेक्स्ट संडे, हाँ देखेंगे, हाँ ठीक, टाइम हो गया जिनवानी।
काल को धोती अतः कहाती जिन वाणी जयवंतो मा जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवाते कर्म हरो मा अब तक हम विषयांद रहे अब ना हम विषयांद रहे।